मालविका के भड़काने पर केशव राजवंश विलाया था और उसने वहां अच्छा खासा तमाशा किया था। केशव ने राधिका से इस बात पर झगड़ा किया कि उसने उनके जुड़वां बेटियां होने का सच उससे छुपाकर रखा। इशिका ने बीच बचाव करके मामले को संभाला। उसने केशव को बताया कि राधिका भी इस बारे में नहीं जानती थी। फिर केशव की बातों से उन्हें पता चला कि मालविका को उसने किडनैप करके रखा है। इशिका सब समझ गई थी। मालविका ने वहां से भागने के लिए केशव को मैनिपुलेट किया था। इशिका के समझाने पर जब केशव अरमान के साथ वहां पहुंचा तो सच में मालविका वहां पर नहीं थी। मालविका जैसी शातिर औरत हमेशा अपने साथ कोई ना कोई छोटा हथियार रखती ही थी। उसके पास कांच का एक टुकड़ा था जिसके जरिए वो रस्सी काटकर वहां से बाहर आ गई थी। मालविका इस वक्त पेड़ों के बीच छुपते हुए वहां से भाग रही थी। इससे पहले कि केशव सिंघानिया मुझे फिर से ढूंढे, मुझे इशिका तक पहुंचना ही होगा। इस बार इतनी आसानी से अपना बदला लिए बिना मैं जाऊंगी नहीं। उसे अपनी माँ और पति मिल गए तो वो अपनी औकात भूल गई। भूल गई कि किस तरह मैंने उसे अपनी बेटी की नौकरानी बनने पर मजबूर किया था। उसकी हैसियत वही है। मालविका खुद से बड़बड़ाते हुए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु पृथ्वी के साथ नकुल से मिलने जेल पहुंचा। उर्वशी वहां पहले से ही मौजूद थी और वो नकुल से बात कर रही थी। बस एक बार आप जेल से बाहर आ जाओ, फिर अभिमन्यु को उसकी पोजीशन से हटाना मुश्किल नहीं होगा। उसने मुझे चैलेंज किया है कि अगर मैंने आपको जेल से बाहर निकाल दिया तो वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देगा। उर्वशी ने नकुल को सब कुछ बताया। उसकी बातें सुनकर नकुल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भौहें उठाकर पूछा, तुम सच कह रही हो? लेकिन वो इतनी छोटी बात के लिए अपनी पोजीशन क्यों दांव पर लगाएगा? अगर मेरी जमानत नहीं भी हुई तो मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि वो पैसे मैंने खुद के फायदे के लिए नहीं निकाले थे, और मैं पैसे भरने के लिए भी तैयार हूं। फिर मुझे कोई सजा नहीं होगी। वो पागल हो गया है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इस वजह से वैसे भी उसका ध्यान भटका हुआ है। आप चिंता मत करो, मैं आपको जेल से बाहर निकाल ही लूंगी। दूसरा, अभिमन्यु ने जो भी किया है उसे मैं इतनी आसानी से भूलने वाली नहीं हूं। मैं इशिका और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में कभी नहीं आने दूंगी, उर्वशी ने दांत पीसते हुए कहा। इशिका की प्रेगनेंसी के बारे में अब तक नकुल को पता नहीं था। जैसे ही उसे पता चला, उसका चेहरा उतर गया था। वो मायूस आवाज में बोला, मैं हमेशा यही सोचता था कि अभिमन्यु का परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उससे पहले नक्श का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, लेकिन उसकी तो शादी भी गलत लड़की से हुई थी। मेरी सारी उम्मीदें नक्श से लगाना बेकार था। वो किसी काम का नहीं निकला, अब तक मुझसे मिलने तक नहीं आया। क्या उसे पता नहीं कि मैं जेल में सड़ रहा हूँ? नकुल को नक्श पर गुस्सा आने लगा। आप उस पर गुस्सा मत कीजिए, उसका भी काफी कुछ उसके हाथ से निकला है, तो वो परेशान हो गया है। हिम्मत से काम लो, बुरा वक्त है। आज हमारा आया है, कल अभिमन्यु का आएगा। उर्वशी प्यार से नकुल को समझाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसका गुस्सा नक्श पर ना उतरे। अरे, मुझे नहीं पता था कि आप किसी को मोटिवेट भी कर सकती हैं। अब तक तो मैंने आपके मुंह से नेगेटिव बातें ही सुनी हैं, पीछे से अभिमन्यु ने कहा, जो अभी अभी वहां पर आया था और उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अभिमन्यु को देखकर नकुल और उर्वशी दोनों के चेहरे के भाव बिगड़ गए थे। उर्वशी जल्दी से उसकी तरफ पलटी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना, मैं नकुल को यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। अफसोस है कि मरते दम तक आप लोगों का सपना एक सपना ही रहेगा, मुझे मेरी पोजीशन से हटाना, जो कि नामुमकिन है, अभिमन्यु ने वही ना दिखने वाली स्माइल के साथ कहा। फिर वो नकुल के पास आते हुए बोला, नया घर कैसा लग रहा है? आदत डाल लीजिए, अब आपको हमेशा यहीं पर रहना है। हाँ, शिफ्टिंग हो जाएगी, पर कमरा इतना ही बड़ा मिलने वाला है, हो सकता है शेयर भी करना पड़े। नकुल ने उसकी तरफ चलती निगाहों से देखा। वो कुछ कहता उससे पहले उर्वशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने को कहा। नकुल को इस तरह गुस्से में देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी स्माइल उभर आई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, मैंने पता लगाया है कि आपने वो पैसे अपने किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे। जमीन खरीदी गई थी, स्लम एरिया के लोगों को हटाकर वहां कोई लग्जरियस अपार्टमेंट बनाया जा रहा है। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने अपनी जगह खाली करने से मना कर दिया था और वो आज तक नहीं मिले हैं। डिटेल्स आ गई हैं मेरे पास, कुछ तस्वीरें भी हैं। जैसे जैसे अभिमन्यु बोल रहा था, नकुल के चेहरे का रंग उड़ गया था। अब उसे समझ आ गया था कि अभिमन्यु ने अपनी सीईओ की पोजीशन दांव पर क्यों लगाई थी। अगर उसका किया हुआ ये घोटाला बाहर आ जाता तो वो उम्र भर जेल के अंदर रहता। चुप हो जाओ, मैंने कहा, अपना मुंह बंद रखो अभिमन्यु, नकुल उस पर चिल्लाकर बोला। नकुल के रोकने पर भी अभिमन्यु नहीं रुका, वो उसी अंदाज में आगे बोला, उस स्लम एरिया में लगभग 50 से 60 कच्चे घर थे, जिसमें से सिर्फ 30 लोगों ने आपके साथ डील करते हुए पैसे लिए थे। मैंने सुना है कम से कम 100 लोग गायब हुए हैं। मुझे बस एक इशारा करने भर की देर है और पूरा मामला मीडिया के सामने आकर एक हाई प्रोफाइल केस बन जाएगा। नकुल का गुस्सा अब उसके बस के बाहर हो रहा था। अभिमन्यु उसका कच्चा चिट्ठा खोल रहा था, उसने ये कोई पहली बार नहीं किया था। गुस्से में नकुल ने अभिमन्यु का कॉलर पकड़ा और तेज आवाज में कहा, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये पोजीशन राजवंश, सरनेम मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बराबरी कर पाओगे। डैड ने कभी तुम्हें अपना बेटा नहीं समझा, तुम उस घटिया औरत के बेटे हो ना जिसने अपना पाप छुपाने के लिए पहले पैदा करके तुम्हें हमारे सिर छोड़ गई। न जाने तुम्हारे अंदर डैड का डीएनए भी है या नहीं, या किसी और।
नकुल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिमन्यु ने उसके हाथ खुद से झटक कर दूर कर दिए और उसके गाल पर एक कसकर तमाचा लगाया। इस वक्त उसके माथे की नसें उभर आई थी, गुस्से में उसकी आंखें लाल होने लगी थी। थैंक यू सो मच मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाकर आपको बर्बाद करने के लिए एक और वजह देने के लिए। आई चैलेंज यू नकुल राजवंश, खुली हवा में सांस नहीं लेने दूंगा, अभिमन्यु ने बे इंतहा सर्द आवाज में कहा और वहां से जाने लगा। जिस हिसाब से अभिमन्यु ने धमकी दी थी उससे साफ था कि वो यहीं पर नहीं रुकने वाला है। नकुल हफ्स पर कोई बस नहीं चल रहा था। वो पीछे से चिल्लाकर बोला, मेरी बात सुनो अभिमन्यु, हम बात कर सकते हैं। मैं अपने शेयर तुम्हारा नाम करने के लिए तैयार हूँ, पर लेकिन ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर सो कॉल्ड राजवंश, अभिमन्यु ने बिना उसकी तरफ पलटे कहा और फिर वहां से चला गया। अभिमन्यु की बातों ने नकुल को बुरी तरह डरा दिया था। वो बौखलाते हुए उर्वशी को दोनों हाथों से पकड़कर बोला, उर्वशी कुछ करो, अगर ये सच बाहर आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। डैड भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो वैसे भी हमसे हमारा सब कुछ छीन कर ले गया है। मैं और डैड जेल के सलाखों के पीछे आ जाएंगे, कुछ करो, नक्श को बोलो वो इस मामले में कुछ कर सकता है। उर्वशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आज तक नकुल और प्रशांत ने उनके किसी भी सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में उसे नहीं बताया था। हालांकि वो जानती थी कि वो छुपकर पीछे पीछे काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो इस हद तक चले जाएंगे ये उर्वशी ने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। अगर तुम लोगों की वजह से मेरे बेटे पर आंच आए तो मैं सच में तुम्हारे खिलाफ चली जाऊंगी। अब तक तुमने मुझे जिंदगी में कोई खुशी नहीं दी है जो मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे और खुद की खुशियों को दांव पर लगाऊं। क्या जरूरत थी उसे गुस्सा दिलाने की, उर्वशी ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा। उसने गुस्से भरी निगाहों से नकुल को देखा और फिर वहां से जाने लगी।
अभिमन्यु की बातों से उर्वशी को समझ आ गया था कि उससे उलझना सही नहीं है। बात अब सिर्फ सीईओ की पोजीशन तक नहीं रही थी, बात अब अभिमन्यु के अस्तित्व पर आ गई थी जिसे हर कोई नकारना चाहता था, और वो अभिमन्यु राजवंश था। अगर कोई उसे राजवंश एम्पायर की पोजीशन से हटा भी देता तो उसने अपनी शख्सियत को इतना काबिल बना रखा था कि अकेले वो उससे भी बड़ी पोजीशन का मालिक था। अपना अगला प्लान अभिमन्यु ने नकुल को बता दिया था, मतलब साफ था कि वो उसे जेल से बाहर नहीं निकलने देने वाला था। लेकिन अब बारी प्रशांत राजवंश की थी। अभिमन्यु इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में पृथ्वी दिग्विजय राजवंश के साथ उसके केबिन में आए। अभिमन्यु ने भी उन्हें बुलवाया था। रास्ते में पृथ्वी ने राजवंश विला में जो भी चल रहा था उसके बारे में दिग्विजय को बता दिया था, कि कैसे प्रशांत ने वसुधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और वो अभिमन्यु के बुरी तरह खिलाफ हो गया था। दिग्विजय के केबिन के अंदर दाखिल होते ही उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने हमेशा राजवंश खानदान को जोड़कर रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो चल रहा था उसकी वजह से वो काफी आहत हुए थे। दिग्विजय के आते ही अभिमन्यु उठकर उनके पास गया और उनके पैर छुए। दिग्विजय ने उसके सिर पर हाथ रखा और मायूस आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था वो इस हद तक गिर जाएगा। जब तुम छोटे थे और उसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, तब भाभी ने मुझे बहुत समझाया था कि हम उसे पूरी तरह राजवंश खानदान से बेदखल कर दें, लेकिन मुझे लगा था कि कभी ना कभी वो सुधर जाएगा और अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, और वो दिन आज तक नहीं आया छोटे दादू, अभिमन्यु ने शांत लहजे में कहा। अपने बेटे का साथ देने के लिए वो इस कदर अंधे हो गए हैं कि उन्होंने दादी तक पर हाथ उठाने की कोशिश की। वो उस घर में रहने के लायक नहीं है। ऊपर से भैया ने जो भी किया उसके बारे में आपको पता चला होगा। डैड भी उनका साथ दे रहे थे, मुझे बहुत से सबूत मिले हैं। अगर हमने उन्हें कंपनी से पूरी तरह बेदखल नहीं किया तो कल को हमारी इज्जत पर बात आ सकती है। मैं नहीं चाहता कि राजवंश एम्पायर के शेयर्स नीचे आएं। बोलो क्या करना है, दिग्विजय ने सख्त आवाज में कहा, मानो वो कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो। मैं चाहता हूं कि आप डैड और भैया को कंपनी से पूरी तरह बेदखल कर दीजिए। उन्होंने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की आड़ में जो भी जुर्म किए हैं वो सामने आने वाले हैं। अगर वो कंपनी का हिस्सा रहे तो सबको यही लगेगा कि हम भी उसमें इन्वॉल्व थे। ऊपर से राजवंश एम्पायर का फंड यूज हुआ है। अभिमन्यु ने दिग्विजय के सामने पूरी बात रख दी थी। दिग्विजय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। ये कोई छोटा फैसला नहीं था। अगर प्रशांत और नकुल को राजवंश फैमिली से बेदखल किया जाता तो उनकी हर छोटी बड़ी एसेट्स को छीन लिया जाता, लेकिन फिलहाल हालात यही कह रहे थे। काफी सोचने के बाद दिग्विजय ने भारी मन से हाँ कह दिया था। वो वसुधा ही थी जो अब तक उनके परिवार को संभाल कर रख रही थी। दिग्विजय की आंखें नम होने लगी। उन्होंने अभिमन्यु से कहा, मैंने और भाभी ने हमेशा यही सोचा था कि प्रशांत मेरे भैया से अलग होगा। मेरे भाई अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। अभिमन्यु, प्रशांत कामयाब नहीं हुआ हमें इस बात का दुख नहीं था, लेकिन पता नहीं उसका ये बर्ताव किसके जैसा है। अपने अपनों को दुख पहुंचा रहा है और स्वार्थी बन गया है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं छोटे दादू, पर मैं अपनी दादी को भी हर्ट नहीं कर सकता। मैंने उनसे वादा किया है कि अगले 24 घंटे में मैं डैड को उस घर से बाहर निकाल दूंगा। वो हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, इसके लिए ये कदम उठाना जरूरी है, और तभी मैंने आपको जल्दबाजी में यहां बुलाया, अभिमन्यु ने जवाब दिया। दिग्विजय ने उसकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु ने इमरजेंसी में लॉयर और एक बोर्ड मीटिंग को बुलाया। वहीं उसने पृथ्वी को भी वसुधा को लाने के लिए भेज दिया था।
अगर प्रशांत को उनकी फैमिली से बेदखल करना था तो ये काम वसुधा और दिग्विजय ही कर सकते थे, क्योंकि वो उम्र में उससे बड़े थे। प्रशांत इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसके पीछे से क्या कुछ चल रहा है। उसने अभिमन्यु की बात को भी इतना सीरियसली नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ नकुल से मिलने के बाद उर्वशी नक्श से मिलने के लिए पहुंची। अगर अभिमन्यु ने धमकी दी थी तो उर्वशी अच्छे से जानती थी कि वो कोरी धमकी नहीं है, वो सच में इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। उर्वशी वहां पहुंची तो उसने देखा नक्श बेपरवाही से अपने लिविंग रूम के कोच पर लेटा हुआ था। उसके शर्ट के बटन खुले थे और पास में शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। एक ही दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना ली, उर्वशी ने उसके पास आते हुए कहा तो नक्श ने बेरुखी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। नक्श का नशा अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं था। उसने सर पकड़कर कहा, चलो आप लोगों को मेरी याद तो आई, मुझे लगा कि अभिमन्यु चाचू की तरह मैं भी आपको यूजलेस लगता हूँ। अपनी बकवास बंद करो और नशे से बाहर निकलो। बाहर क्या चल रहा है तुम्हें अंदाजा भी है? अभिमन्यु तुम्हारे बाप के पूरी तरह खिलाफ हो गया है और उसे बर्बाद करने पर तुला है, और तुम यहाँ मुझे पार्टी कर रहे हो, उर्वशी ने सार्कास्टिक लहजे में कहा। मैं यहाँ पार्टी कर रहा हूँ? आपको दिख नहीं रहा मैं अपना दुख भूलने की कोशिश कर रहा हूँ? पहले मेरा प्यार मुझसे छिन गया, अब तो मेरे पास राजवंश एम्पायर के शेयर्स भी नहीं बचे और ना ही कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन, बस थोड़े बहुत पैसे हैं जिसे एक ढंग का बड़ा बिजनेस भी खड़ा नहीं कर सकता, नक्श गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोला। उन दोनों के बीच की बहस बढ़ती जा रही थी। उर्वशी जितना नक्श को समझाने की कोशिश कर रही थी, नक्श इतना ही उसके खिलाफ बोल रहा था। उर्वशी समझ गई थी कि ये किसी काम का नहीं है। थक हार कर उर्वशी वहां से लौट गई तो वहीं दूसरी तरफ मालविका इस वक्त राजवंश एम्पायर पहुंच चुकी थी। राजवंश विला में घुसना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन राजवंश में काम के सिलसिले में लोग आते जाते रहते थे। इसी मौके का फायदा मालविका ने उठाया और उसने इशिका के बजाय पहले अभिमन्यु को अपना निशाना बनाने का सोचा।